हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 2। श्री भगवान वाचा संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म यानी कर्म योग दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो ये कितना सुंदर बात है। अगर आपको उत्तर प्रश्न याद हो, प्रश्न ये था अर्जुन का कि मुझे कर्म त्याग देने चाहिए, जंगल में चले जाना चाहिए, कि कर्म योग करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। क्योंकि जनरली हम सुनते हैं सिद्धांत ये है कि कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता ही है। तो यानी कर्म हम कोई कार्य करते हैं तो कर्म बंधन लगता है। तो इस बात को आधार लेकर के व्यक्ति सोचेगा, ठीक है तो मैं कर्म ही नहीं करता हूं और मैं ठीक हो जाऊंगा, इस प्रकार से कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। पहली बात तो ये कि जीवात्मा कभी कार्य ना करे, किसी समय कोई कर्म ना करे, ये असंभव है। लेकिन उस कर्म को हम किसके लिए कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमें कर्म फल लगेगा कि नहीं लगेगा। एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा उससे पहले कि मैं परपट में जाऊं तो आप समझ पाओगे। जैसे कोई एक आर्मी का जवान युद्ध भूमि पे बहुत सारी गोली चलाता है, बहुत सारे जो आतंकवादी इत्यादि हमको मारता है, और उसके लिए वो उसको मेडल मिलता है क्योंकि वो सरकार के लिए युद्ध कर रहा है, गोली चला रहा है। लेकिन अगर वही सैनिक अपने घर में आकर के गुस्से में आकर किसी को गोली मार देगा तो वही सरकार उसको दंड देगी। तो यानी कि अगर हम भगवान के लिए कुछ कार्य करते हैं, सिद्धांत यह है, मैं आपको खाली उदाहरण से समझा रहा था कि भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए कोई कर्म बंधन नहीं लग रहा। जैसे कि आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं अभी भगवद गीता से प्रवचन दे रहा हूँ, तो क्योंकि ये प्रवचन भगवान के संबंध में है, भगवान की कीर्ति के प्रचार के लिए है, इस कारण से इसका कोई हमें कर्म बंधन नहीं लगता, कोई कर्म फल नहीं लगता, और साथ ही साथ पहले किए गए कर्म फलों को ये भी ध्वस्त कर देता है। अगर कोई बुरा या पुण्य भी किया है और कोई पाप भी किया हो, वो सब खत्म हो जाता है और व्यक्ति मुक्ति के पथ पे बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो ये बहुत बड़ा भगवद गीता का रहस्य है जो लोगों को पता नहीं है, और कुछ लोगों को पता होने के बावजूद भी उस पर श्रद्धा नहीं रखते। तो भक्तों के मुख से सुनना चाहिए कि किस प्रकार से अपने कर्मों को हम भगवान को समर्पित करें। तात्पर्य, सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है। इससे पहले कि मैं श्लोक में जाऊं, थोड़ा समझिए। मैं अपनी भौतिक चेतना के अनुसार मैं सोचता हूं, हम सोच रहे हैं कि हम शरीर हैं। तो शरीर में क्या है? इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। तो जब हम अपनी पहचान अपने इंद्रियों और अपने शरीर से करेंगे या करते हैं, तो इंद्रियों को जो भी अच्छा लगेगा उसको करने में हमें कोई हिचक नहीं होगी। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए इस बात को। इंद्रियों को जो भी लगेगा अच्छा उसे करने में हमें कोई हिचक नहीं होगी। लेकिन ये एक पागलपन है। जैसे व्यक्ति कोई पागल खाने में हो और अपने को भारत का प्रधानमंत्री माने तो ये पागलपन ही कहलाएगा। तो इसीलिए अपनी पहचान जब हमें ठीक से नहीं पता होगी तो हम स्वभावतः नेचुरली केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करेंगे। यहाँ खाना है, वहां पीना है, ये करना है, वो करना है, आहार निद्रा भय मैथुन में ही अपना जीवन बिता देंगे, या फिर इसको और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो ये मानव जीवन की सबसे बड़ी हार है, पराभवस्तावद। हाँ, श्लोक आएगा तो मैं उसको बोलता हूँ। तो ये भगवान ऋषभदेव जो भगवान कृष्ण के अवतार हैं, 5वें स्कंद में अपने बच्चों को बता रहे हैं, 100 बच्चों को। नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यदिन्द्रिया प्रीतय आप्रणोति न साधु मन्येत आत्मनोयम् आसन्नपि क्लेशद आस देह पराभवस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वं यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः एवं मनः कर्म वशं प्रयुङ्क्ते अविद्यात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे नमुच्यते देहयोगेन तावत्। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं, मत का अर्थ है पागल हैं। वे ये नहीं जानते कि उनके क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। ये पहले श्लोक का ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने यहाँ पे किया है, इसको थोड़ा समझिए। हमने समझाया अभी कि शरीर अपने को शरीर मानने के कारण व्यक्ति इंद्रिय सुख को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता है, और ये बहुत बड़ा पागलपन है। पागलपन क्यों है ये भी समझ में आना चाहिए। ये जो हमारा शरीर है, ये हमको सुख, जो इंद्रिय सुख है, वो बहुत थोड़ा देता है। जैसे आंख से कोई वस्तु देखते हैं तो कितनी देर सुख मिलता है, जीभ से कुछ चखते हैं तो कितनी देर सुख मिलता है, लेकिन दुख देने की क्षमता इस शरीर में बहुत अधिक है। जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी ने हमें कुछ बुरा बोल दिया, तो हम मन से सोचते 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 पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहेंगे और दुखी रहेंगे। या बुखार हो गया तो पूरा जीवन, पूरा दिन हम उससे कष्ट का अनुभव करेंगे। या फिर ये सब तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक आप रास्ते में चल रहे हो, एक एक पिन आपके पाँव में घुस जाए, तो फिर आप और कुछ नहीं सोचेंगे, खाली ये सोचेंगे कैसे ये पिन बाहर निकले। ना तो आप उस समय आहार के बारे में सोच पाएंगे, ना निद्रा के बारे में सोच पाएंगे, कुछ नहीं सोच पाएंगे। तो इतना दुख भोगना के कारण जो शरीर हमको मिला है, ऐसा कारण यही है कि हमारी कोई भौतिक इच्छा पिछले जीवन में रही थी, इस कारण से हम इस शरीर को प्राप्त किए हैं। जैसे कोई व्यक्ति जेल में है, तो जेल की ड्रेस पहना हुआ तो मतलब क्या है, जेल में है तो सब मतलब क्या है, कुछ ना कुछ अपराध किया होगा। अब कोई अपराध किया होगा, क्या अपराध किया वो नहीं पता, लेकिन अपराध किया है इसलिए जेल में है। तो उसी प्रकार से हम इस भौतिक जगत में हैं, ये शरीर है, ये एक स्पष्ट प्रमाण है कि हम लोग भौतिक इच्छा से, इस जगत को भोगने की इच्छा से ग्रसित हैं, और इसी को अविद्या कहा जाता है, इसी को भौतिक रोग कहा जाता है, इसी को भवबंधन, इसी को भवरोग कहा जाता है। एक और बात हम बता रहे हैं, अच्छा तो इसीलिए अब हुआ क्यों, प्रभुपाद बोल रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। श्रेय का अर्थ क्या होता है, श्रेय का अर्थ होता है मेरे लिए आगे अच्छा क्या है, और प्रेयस का अर्थ होता है कि अभी मेरी इंद्रियों को क्या अच्छा लगता है। तो आजकल के समाज में प्राय श्रेय के बारे में व्यक्ति कुछ सोचता ही नहीं है, आंखें बंद करके पड़े रहते हैं, सोचते हैं बस देखा जाएगा आगे जो भी होगा देखा जाएगा। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। हम लोग अपने बैंक में भी पैसा रखते हैं ताकि बुढ़ापे में काम आए, तो इस श्रेय के बारे में थोड़ा अंदाजा है, लेकिन मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे क्या करेंगे इसके बारे में व्यक्ति कोई जिज्ञासा नहीं करता है। तो इस लॉजिक को पढ़िए, इस श्लोक को समझिए। इंद्रिय तृप्ति के कारण, भोग के कारण मुझे ये शरीर मिला है इस समय, जिसमें मैं दुखी हूं, मैं शरीर में कष्ट पा रहा हूं, तो अब मुझे और कोई इंद्रिय तृप्ति के कार्य नहीं करने चाहिए जिससे मैं और दुख प्राप्त करूं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आइसक्रीम और ठंडे पदार्थ खा करके मुझे कफ हो जाए, परेशानी हो जाए, तो क्या मुझे, और जिसके द्वारा मुझे दिक्कत हो रही है, तो उसके तो क्या मुझे आगे भी इसी प्रकार से उल्टी सीधी चीजें खाती रहना चाहिए जिससे मुझे और कष्ट हो। तो बुद्धिमान व्यक्ति का उत्तर तो यही होगा कि नहीं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है, और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है, और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्म में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। बहुत सुंदर लाइन है, प्लीज बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए, मनुष्य जीवन में ही हम जिज्ञासा कर सकते हैं, बुद्धि का उपयोग करके ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है। इतना तो हम कोई भी एक छोटा सा छोटा बुद्धिमान व्यक्ति भी समझ सकता है कि मैं अपना हाथ नहीं हूं, मैं अपनी आंख नहीं हूं। हम बोलते हैं ये मेरी आंख है, मेरे हाथ है, मेरा लीवर है, मेरा पेट है, मेरा शरीर है, ऐसा करके बोलते हैं, मेरा मन, मेरा बुद्धि। तो इस कम से कम यहां से व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अरे भाई, मैं शरीर तो नहीं हूं, तो केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में क्यों अपना जीवन व्यतीत करता रहूं, ये सोचते हुए कि मैं शरीर हूं। तो यहां से जिज्ञासा शुरू होती है कि मैं हूं कौन। उसके बाद स्वरूप को नहीं जान लेता। हम सभी का स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। हम सब लोग इस जगत में सेवा करते हैं, सेवा करने की प्रवृत्ति को नहीं त्याग सकते, लेकिन सेवा हम करना चाहिए हमें भगवान श्री कृष्ण की। तो तो अगर इस बात को नहीं समझते हैं व्यक्ति, तो फिर स्वभावतः, क्योंकि हम दास तो हैं ही, तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय के भोगों के लिए हम सेवा करते रहेंगे, अपने इंद्रियों की सेवा करेंगे, और जितनी इंद्रियों की सेवा करेंगे उतना ही अधिक हम भोग की वासनाओं से लिप्त होते चले जाएंगे। जैसे आपने सठियाना शब्द सुना होगा, सठियाना मतलब 60 साल में व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। कारण क्या है? पूरा जीवन उसने अपनी इंद्रियों की सेवा करी, अब उसकी इंद्रियां का जो तृष्णा है, जो भूख है, वो तो कम हुई नहीं, क्योंकि तो होती भी नहीं है तर्पण करने से, इंद्रियों का भोग भोग में लगे रहने से, लेकिन इंद्रियों की शक्ति भोग करने की बहुत कम हो गई। तो इस कारण से भोग की इच्छा है और भोग की शक्ति नहीं है, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो और लेकिन फिर क्या होता है, शरीर त्यागेगा और दोबारा नए उन इच्छाओं को लेकर के दूसरा शरीर धारण करेगा और फिर दुख भोगता हुआ चला जाएगा। तो ये बुद्धिमानी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे लास्ट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि ठीक है, हमारा मन सकाम कर्म में है, हमारे हित में भौतिक इच्छाएं हैं और हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली हम क्या हैं, हमारा क्या स्वरूप है, लेकिन फिर भी वासुदेव की प्रति भक्ति और प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। तो व्यक्ति कहेगा, अरे कैसे होगा भाई, मेरे मन में तो भौतिक इच्छाएं हैं। तो उन भौतिक इच्छाओं को हमें कृष्ण की तरफ मोड़ना होगा। मान लीजिए आप गाना चाहते हैं, तो आप हरे कृष्ण मंत्र गाइए या भगवान श्री कृष्ण के भजन गाइए जो प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा दिए गए हैं। आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं, तो पहले भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित कीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। आप बोलना चाहते हैं, तो भगवान के भगवद गीता को समझिए और दूसरों को उसके बारे में बताइए। और ये अद्भुत बात है, और आप जीवन में अनुभव करेंगे, जैसे जैसे हम इन भक्ति की क्रियाओं में लगते हैं, वैसे वैसे हमारी चेतना शुद्ध होती चली जाती है और अधिक इन कार्यों को करने की हमारे उत्साह और प्रेरणा हमको मिलती है भगवान के द्वारा। तो फिर सिद्धांत समझिए, जब हम कुछ क्रिया करते हैं उससे हमारी चेतना प्रभावित होती है, और साधना भक्ति में का अर्थ यही है कि हम अपने शरीर से कुछ ऐसा करें, इंद्रियों से ऐसा कुछ करें जो हमारे मन को प्रभावित करे। इस समय मन हमारा भगवान से विमुख होकर चलता रहता है स्वभाव नेचुरली, तो हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, तो ये तरीका है। तो हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, लेकिन अज्ञान के कारण ढका हुआ है, और उसी प्रेम के अभाव में हम अपने स्वरूप को भी नहीं समझ पा रहे हैं और भक्ति के सुख से भी वंचित हैं। तो हमें करना क्या है, गुरु के मार्गदर्शन में, वैष्णव के मार्गदर्शन में अपनी इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं, वो सीखना है। जैसे अगर आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो अपने कान को आप भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, और इसके द्वारा आप देखिए कुछ समय के लिए तो कम से कम आपकी चेतना भगवान में जाती है कि हाँ भाई, मैं गीता के बारे में सुन रहा हूँ। तो इसी प्रकार से अधिक हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान के बारे में बोलना चाहिए, उनके उनका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे अपनी इंद्रियों को हम अधिक से अधिक अगर भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो फिर हमारी चेतना जो है वो भगवान की तरफ मुड़ेगी और भगवान की तरफ प्रीति जागृत होगी, और भगवान की प्रति प्रीति होगी तो भगवान का स्मरण होगा मृत्यु के समय। मृत्यु के समय उसी चीज का स्मरण होगा, उसी व्यक्ति का स्मरण होगा जिससे हमें सबसे अधिक प्रेम है, आसक्ति है। तो ये आसक्ति हमको इस जीवन काल में उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए, और मृत्यु के समय नेचुरली भगवान का स्मरण होगा, और जब भगवान की आसक्ति होती है तो इस जगत की आसक्ति अपने आप छूट जाती है। लोग कभी कभी से घबराते हैं, लेकिन एक्चुअली भगवान की आसक्ति होने में व्यक्ति को, जीवात्मा को सच्चा सुख प्राप्त होगा। यहाँ की आसक्ति की वो जलाने वाली है। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं भी करता, तो भगवान फिर अगले जन्म में उसको भक्ति करने का मौका देंगे। जिस प्रकार से इंद्र तृप्ति करने के लिए मौका देते हैं प्रकृति, उसी तरह भगवान फिर से मौका देंगे भक्ति करने के लिए, और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए भक्ति के पथ में बहुत अच्छा है, कोई इसमें लाभ, कोई इसमें हानि नहीं है, केवल लाभ ही लाभ प्राप्त है। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावना मृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावनामृत से रहित सन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने वक्तृसामृत सिंधु में पुष्टि की है। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। इससे पहले कि हम यहां तक इससे जाएं, इसमें थोड़ा समझने का प्रयास करना है करेंगे। देखिए, हम लोग शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन इस समय अपने शरीर से पूरी तरह से चिपके हुए हैं चेतना के द्वारा। तो ऐसा केवल ये सुन लेने मात्र से कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, ये ज्ञान पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मन जो है वो हमारा कर्मात्मक है, भोग की वासनाओं से पूरी तरह से लिप्त है। तो इसीलिए भगवान यहां बता रहे हैं, भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं कि आप भक्तिमय कर्म कीजिए, हम सब लोग भक्तिमय कर्म करें, और इस भक्तिमय कर्म करने से हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट होने लगेगा। यानी कि भक्ति का पथ में ये साक्षात्कार कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा, ये शारीरिक की क्रियाओं से ही संपादित होता है। ऐसा नहीं है कि हमें बस खाली सोचते रहना है रूम में बैठे बैठे कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये हमें शुरुआत में हम फिलोसफी के द्वारा हम समझते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो चुपचाप व्यक्ति बैठा रहे। आत्मा अत्यधिक क्रियाशील है, और इन क्रियाओं को हमें केवल कृष्ण की तरफ मोड़ना है। जैसे अर्जुन ने जब आत्मा के ज्ञान के बारे में सुना, और यहाँ पे प्रश्न भी कर रहे हैं, तो वो सोच सकते हैं कि अब मैं तो आत्मा हूं तो मुझे क्या युद्ध करने की जरूरत है। अरे ठीक है, हम आत्मा हैं, लेकिन इस समय हमारा शारीरिक आवेश तो है, तो हमें ऐसे कर्म करने हैं जिसके द्वारा भगवान कृष्ण प्रसन्न हो और वो हमारे शरीर से संपादित होते हैं। इसके बारे में बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसे आपको कोई नदी पार करनी है तैर के, तो आपको नदी के भाव के संग भी बहना पड़ता है और आप नदी पार भी करते हो। तो नदी के संग बहना, ये है हमारी शारीरिक क्रियाएं, इन द सेंस कि हमें नहाना पड़ता है, शरीर का ध्यान रखना पड़ता है, परिवार चलाना होता है, ठीक है, लेकिन अपने उद्देश्य को न भूले। अगर व्यक्ति की मान लीजिए पत्नी है, बच्चे हैं, तो इनका पालन इस प्रकार से करें ताकि वो भी भक्ति का लाभ उठा सकें, अपने भोग के लिए इसको उनको उनको ना देखें। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमको, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, हमें कर्म से संन्यास नहीं लेना है, हमें कर्म में संन्यास लेना है। फिर से रिपीट करूंगा, हमें कर्म से संन्यास नहीं लेना है, यानी कि हमें अपने कर्म त्यागने नहीं है, लेकिन कर्म में संन्यास लेना है। यानी कि संन्यास का अर्थ क्या होता है? न्यास मतलब स्थित होना, सम मतलब होता है सम्यक, संन्यास का मतलब हो गया है अपनी स्थिति में, वास्तविक स्थिति में, प्रामाणिक स्थिति में स्थित होना। और जब सभी जीवात्माओं की स्थिति है कि वो कृष्ण के नित्य दास हैं, तो कर्म में संन्यास लेने का अर्थ हो गया कि अपने कर्म को कृष्ण को समर्पित करना, इस भावना से कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं कृष्ण के लिए सेवा करूं। भले ही इस समय मुझे कृष्ण के लिए प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन कर्तव्य भावना से भी कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से वो मुक्त अवस्था में रहता है, चाहे वो इस समय बाह्य रूप से कितना भी बद्ध अवस्था में रहे। तो एक और चीज समझना चाहिए कि हमें त्यागना क्या है। हमें ये इस भावना को त्यागना है कि इस जगत में कोई भी वस्तु मेरी है। जब मैं सोचूंगा कि इस जगत में कोई भी वस्तु मेरी है, तो स्वभावतः मैं उसका भोग करने के बारे में सोचूंगा, चाहे वस्तु हो, चाहे वो संबंधी हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर ये हम समझते हैं, लेकिन इससे पहले समझिए कि आप थोड़ा सा विचार करिए कि इस जगत में आप, मान लीजिए मैं इस रूम में बैठा हूं, तो पंखा है, लाइट है, दीवाले हैं, ये कोई भी वस्तु मैं लेके नहीं आया, अभी तो मैं अपना शरीर भी नहीं लेके आया अपने साथ में, मेरा इस पर कोई नियंत्रण भी नहीं है। तो बुद्धिमानी से व्यक्ति ये तो समझे कि इस जगत की कोई भी वस्तु उसकी नहीं है, और वो साथ में कुछ लेके भी नहीं जाएगा। और भगवद गीता के द्वारा हम समझते हैं कि जितना भी कुछ है, भूमि रपुनलो वायु खम मनो बुद्धि रे वचा, सब कुछ जो है वो भगवान का है, हमारा मन और बुद्धि भी भगवान का है। तो इसका उपयोग हमको जब भगवान की सेवा में करना है, तो यानी कि हमको इस जगत में कुछ त्यागना है नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं। जैसे कोई भिखारी बोले कि मैंने ताजमहल को त्याग दिया, तो उसको कोई मतलब नहीं है, ताजमहल तुम्हारा था ही नहीं पहले से, पहले से ही नहीं था तो त्यागे वो क्या तुम। तो इसलिए हमको त्यागना ये है कि हम भगवान से अलग हैं, इस कंसेप्ट को त्यागना है, भगवान के हैं और इस जगत की हर वस्तु भगवान की है, और इसलिए भगवान की सेवा में नियोजित होना चाहिए, ये बात समझ में आना चाहिए। तो ये सच्चा त्याग है और ये सच्चा संन्यास है। इसलिए समाज की किसी भी स्थिति में जो जो आपको अच्छी लगती है उसमें आप रह सकते हो, और इस भावना से कर्म कर सकते हैं, और इस ज्ञान के द्वारा कर्म कर सकते हैं कि मुझे ये कर्म कृष्ण के लिए करने हैं। प्रापंचकितया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। ईशाभाष्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता होता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है वह नित्य संन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि क्रियाशीलता ये आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए सहज है, क्रिया शून्यता ये कृत्रिम है। कुछ मत करो, बस शांति से बैठे रहो, ये बहुत कृत्रिम है। कितनी देर बैठेंगे? लेकिन जैसे आप देख सकते हो, बच्चों को बोलो कुछ मत करो, बस शांति से चुपचाप बैठो, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन बच्चों को अगर हम खेल में लगा देते हैं, किसी कार्य में लगा देते हैं, तो वो परेशान नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी और यहाँ समझा रहे हैं, भगवान स्वयं इस बात को बोल रहे हैं। और अर्जुन भी देखिए, भगवान गीता में बोल रहे हैं कि आप युद्ध करो, ज्वर से रहित होकर के, लिथार्जी से रहित होकर के युद्ध करो। लेकिन किस ज्ञान से युक्त होकर के युद्ध करो कि ये युद्ध जो है ये भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान चाहते हैं युद्ध हो, धर्म की संस्थापना हो, अधर्म का नाश हो, तो हमें करना चाहिए। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, अमार आज्ञा गुरु हो या तार आई देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो लोगों लोग भगवान के ज्ञान के अभाव में दुख भोग रहे हैं, और भक्तों के पास ये ज्ञान है, तो हम सबका कर्तव्य है कि भगवद गीता को ठीक से सुने, समझें, और जिन जिनके पास भी थोड़ी श्रद्धा है उनको बता करके उनका जीवन कृतार्थ करने के लिए प्रयास करें, तो ये सच्चा संन्यास होगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसका उद्देश्य यह है कि हम भगवान की कीर्ति का प्रचार करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप सन्यासी हैं। चाहे आप घर पे हों, चाहे आप ब्रह्मचारी आश्रम में हों, चाहे कहीं पे भी हों। और इस बात को भगवान अगले श्लोक में समझाएंगे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्ण।